नमस्कार, हम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक के एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र है, ऐच्छिक चौथा प्रश्न पत्र जो साहित्य वर्ग नाम से पहचाना जाता है। इसके अंतर्गत हम प्राचीन एवं निर्गुण भक्ति काव्य नामक प्रश्न पत्र का विस्तार से विचार करेंगे। इस संवाद के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरा शुभ नाम है सुनील कुमार लवटे। मैं कोल्हापुर के महावीर महाविद्यालय में कभी हिंदी पढ़ाया करता था, वहां का प्राचार्य भी था और दुनिया के अनेक जगह मैंने हिंदी पढ़ाने का काम किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके सामने आज प्राचीन और निर्गुण भक्ति काव्य पर विचार करने वाला हूं। इसके पहले वैसे मेरा और आपका परिचय हो गया है। इसके पहले मैंने आपसे संवाद किया था भाषा प्रौद्योगिकी पर, उसमें 10-12 व्याख्यान मैंने इसके पहले आपके साथ साझा किए थे। आज हम आदिकाल और निर्गुण काव्य की जो चार महान कृतियां हैं उन कृतियों को लेकर संवाद करने वाले हैं। उसमें एक है हिंदी की वीरगाथा परंपराओं का एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, फिर भक्ति काव्य का एक दूसरा ऐसा ही महाग्रंथ है कबीर ग्रंथावली, तीसरा है श्रृंगार और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ विद्यापति की पदावली, और चौथा एक ग्रंथ जिसको लेकर हम आपके साथ बात करेंगे वह ग्रंथ है इसी धारा का, माने जिसको मैं भक्ति काव्य कहा करता हूं या संत काव्य निर्गुण काव्य जिसे धारा के रूप में कहा करते हैं। उसमें निर्गुण ईश्वर को लेकर दो धाराओं का विचार हिंदी में हो गया। एक को हम कहा करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरे को कहा करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। माने ईश्वर को पाने के दो मार्ग भक्ति में बताए गए हैं। एक है कबीर के नेतृत्व में चलने वाली ज्ञानाश्रयी शाखा, उस शाखा उसकी परिस्थितियां उसकी प्रवृत्तियां आदि को लेकर हम कबीर ग्रंथावली के जरिए विचार करेंगे। दूसरी जो प्रेमाख्यानक परंपरा है या प्रेमाश्रयी भक्तिधारा, उसमें हम एक सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, उसका एक महाकाव्य है पद्मावत करके, उसके जरिए उस धारा का विचार हम करेंगे। एक तरह से मेरे प्यारे छात्रों, हम प्राचीन और निर्गुण काव्यधारा की चार विभिन्न धाराओं की प्रातिनिधिक रचनाओं का परिचय साहित्य वर्ग इस प्रश्न पत्र में करने वाले हैं। छात्रों, एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि साहित्य का और विशेषकर साहित्य का इतिहास की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके दो मार्ग होते हैं। एक जैसे हम कभी स्कूलों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ते थे और उसमें एक पर्चा हम देखा करते थे वह था इतिहास का। इतिहास अक्सर अतीत से जुड़ा होता है, भूतकाल से जुड़ा होता है, और वो भूतकाल से जुड़ी जो रचना होती है, हमारी यह एक गलत फहमी है कि इतिहास माने युद्ध, इतिहास माने वर्ष, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इतिहास उससे परे भी जाकर एक सांस्कृतिक साझा कार्यक्रम होता है, एक सांस्कृतिक विकास होता है मनुष्य का, उसको भी देखने का एक तरीका है। कभी हम कला के माध्यम से इतिहास को जानते हैं, कभी साहित्य के मार्ग से, कभी काव्य के मार्ग से, कभी राजनीति के मार्ग से, कभी संस्कृति के मार्ग से। हमारी इतनी विशाल ज्ञान शाखा है दोस्तों कि किसी एक मार्ग से किसी चीज को पाना एकांगी विचार होता है। तो जब हम साहित्य का विचार करते हैं तो एक सरसरी निगाह से हम वर्षों के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से इतिहास को देखते हैं और दूसरा रचनाओं के जरिए भी हम इतिहास देखते हैं। इस साहित्य वर्ग प्रश्न पत्र में हम रचनाओं के जरिए साहित्य का अध्ययन और इतिहास का विशेष विचार करने की योजना बना रहे हैं। हमारी जो पहली रचना है यानी इकाई, यदि आप पाठ्यक्रम देखेंगे उसमें इकाई एक में एक पाठ्य पुस्तक बताई गई है, पृथ्वीराज रासो नाम का एक हिंदी का पहला महाकाव्य है। उसके संपादक रह चुके हैं हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। इन दोनों ने इस पृथ्वीराज रासो नामक आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वह संपादित की है। उस पुस्तक का तो हम परिचय लेने वाले हैं, लेकिन एकदम मैं आपके सामने पुस्तक रखूं तो शायद आप दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तांत्रिक शब्द हैं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने रखूंगा कि पृथ्वीराज रासो नाम का ये जो काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य है, ये रासो क्या है, ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। ऐसी छोटी छोटी हमारी आशंकाएं जो होती है वह इसलिए निर्माण होती है कि हम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए एक प्रारंभिक रूप में मैं आपको बिल्कुल सरसरी निगाह से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बिल्कुल संक्षेप में समझाना चाहूंगा। वह इसलिए जरूरी है कि उसके माध्यम से भी आने वाली कृतियों का अध्ययन सुकर होने की संभावना मुझे लगती है। कोई भी इतिहास होता है दोस्तों, और विशेषकर साहित्य का इतिहास होता है, जो आम तौर पर इतिहास होता है वो किसके जरिए लिखा जाता है आप जानते हैं कि शिलालेख होते हैं, कागजात होते हैं, समय की बहुत सारी ऐसी सबूते और गवाह होते हैं, उसके आधार पर एक आम इतिहास लिखा जाता है। साहित्य का इतिहास लिखने का तरीका दोस्तों अलग होता है। हम जब साहित्यिक इतिहास की बात करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके दो प्रमाण होते हैं। एक को हम शब्द प्रयोग करते हैं अंतःसाक्ष्य। अंतःसाक्ष्य माने बिल्कुल प्रामाणिक गवाह, कागजात, किंवदंतियां, इतिहास, लिखित सामग्री, काव्य ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ उस काल के, इनके आधार पर जो इतिहास उभरता है वह सच्चा इतिहास होता है। जैसे हमारे मनुष्य के बारे में हम देखते हैं, देखो कि हमारा जीवन कैसे बनता है। जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में एक हिस्सा है कि जिसमें मांसल पेशियां है, खून है, हड्डियां हैं, तरह तरह की बातें, और इसको लेकर एक मेरे शरीर में एक सॉफ्टवेयर भी बैठा हुआ है, मज्जा तंतु है, मेरा मन है, मेरा हृदय है, मेरे विचार है, मेरी वृत्तियां हैं, ये मेरा आंतरिक जीवन है, आंतरिक वृत्ति है, मेरा आंतरिक व्यक्तित्व भी है। साहित्य का भी ऐसा होता है। साहित्य जो बनता है, साहित्य का इतिहास जो बनता है, वह एक तो अंतःसाक्ष्य से बनता है, माने कि समय समय पर जिन रचनाकारों ने कृतियां लिखी, काव्य लिखा, नाटक लिखा, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, कोई भी साहित्यिक जब कोई रचना लिखता है ना दोस्तों, तो वह उसमें से अपने को काट नहीं सकता। हम तो ऐसा मानते हैं कि साहित्य जैसे समाज का प्रतिबिंब होता है, वैसे साहित्य दोस्तों उस लिखने वाले व्यक्ति का भी प्रतिबिंब होता है। इसलिए आप ऐसा देखा करेंगे कि ग्रामीण हिस्से में रहने वाले लोग ग्रामीण कथाएं सुंदर लिखते हैं, महानगरों में रहने वाले लोग महानगरीय समस्याओं का अच्छा जिक्र कर सकते हैं। ये कैसे होता है? तो हमारी जो परिस्थितियां होती है उस परिस्थिति का प्रभाव उस व्यक्ति पर बना रहता है। तो परिस्थिति के प्रभाव को लेकर जब कोई रचना उभरती है तो अपने आप वो समय का इतिहास लेकर आती है। तो इसलिए जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए कुछ अंतःसाक्ष्य साधन हमारे हाथ में आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस काल को हम साहित्य वर्ग में लेने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वह दो प्रकार का काल है। एक हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काल है ना, उसको प्रमुख रूप से हमने तीन विभागों में बांटा है। एक है आदिकाल, यानी एकदम प्राचीन काल हिंदी का, कि जहां से हिंदी साहित्य शुरू हो गया। आदि माने प्रारंभ, तो प्रारंभिक काल है आदिकाल। दूसरा कालखंड आता है भक्ति काल, इसको हम मध्यकाल भी कहा करते हैं। मध्यकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास में दो धाराएं आ गई। एक ईश्वर को लेकर बड़े पैमाने पर काव्य लिखा गया, वो भक्ति काव्य कहलाया गया। दूसरा श्रृंगार काव्य, काव्यशास्त्रीय छंद अलंकारों की चर्चा करने वाले पंडित ग्रंथ बड़े पैमाने पर लिखे गए, तो उसको लेकर हमने तीसरा कालखंड बनाया, रीति काल। और चौथा वर्तमान जो है आधुनिक काल। ऐसे प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के चार कालखंड आते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये सारे कालखंडों में, चारों कालखंडों में आप देखा करेंगे कि चारों कालों में अंतःसाक्ष्य साधनों के आधार पर इन कालों का इतिहास इतिहासकारों ने समय समय पर लिखा है। जहां तक प्राचीन और भक्तिकाल का संबंध है, आदिकाल और भक्तिकाल का संबंध है, इसमें हमें ऐसा दिखाई देता है कि संतों के बहुत सारे चरित्र लिखे गए, भक्तों की परंपरा को लेकर बहुत कुछ लिखा गया। हिंदी में एक दो ग्रंथों का नाम मैं बताना चाहूंगा कि जो संत और भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक है भक्तमाल नाम का ग्रंथ, इसमें ईश्वर के भक्तों के चरित्र, उनकी रचनाएं, वो क्या पाठ करते थे। आपको दोस्तों इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं ना, वो काल कौन सा आता है, तो आज से लगभग 1000 वर्ष पुराना। तो 1000 वर्ष पुराने कालखंड में लिखना आज जैसा आसान नहीं था। मैं एक छोटी बात आपको बताना चाहूंगा, पिछले मेरी व्याख्यान के धारावाहिक में मैंने बताया था कि आज हम लिखते पढ़ते हैं बिल्कुल आसानी से, पुराने जमाने में लिखना पढ़ना इतना आसान नहीं था। और लेखक वक्ता शायद होते थे, वक्ता दश सहस्त्रेषु कहा गया है। वैसे साहित्यकार भी बिल्कुल अपवाद होते थे, कवि तो विरले हुआ करते थे, कि एक दरबार में एक ही कवि हुआ करता था, इतना कवि दुर्लभ था। ये दुर्लभ क्यों? क्योंकि उस समय लिखना बहुत कठिन था। कैसे कठिन था मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लिखने वाले को क्या क्या करना पड़ता था। लिखने वाले को पहले कागज तैयार करना पड़ता था, स्याही तैयार करनी पड़ती थी, लेखनी तैयार करनी पड़ती थी, चित्रों के लिए रंग बनाने पड़ते थे, और फिर वह अक्षरों को उतार सकता था। हमें तो लिखना कितना आसान है, हमारी लेखनी किसी स्टेशनरी में रेडीमेड में मिल जाती है, एक स्टेशनरी दुकान में सारे साधन लेखन के मिलते हैं। पहले लेखक को ये सारे साधन अपने आप को बनाने पड़ते थे। ऐसे उस जमाने में लोग लिखने कैसे लगे, तो समय समय पर लोगों ने एक ही बात लिखी। जैसे कि हम अपने महाभारत को ले लेंगे, ऐसा बताया जाता है कि महाभारत किसी एक की प्रारंभिक रचना भले हो, समय समय पर उसमें इतने प्रक्षिप्त प्रसंग, पात्र, घटनाएं आ गई कि वह बढ़ता गया। तो पुराने जमाने में परंपरा थी कि कोई ब्राह्मण, पुरोहित, कवि, पंडित, कोई कथावाचक, कोई प्रवचनकर्ता, कोई कीर्तनकार, वह सब भाषिक व्यवहार, वाचिक व्यवहार लिखित नहीं करता था, मुखोद्गत था। महाकाव्य लोगों को उस समय मुखोद्गत थे। तो पहले लोगों ने बोलने और सुनने की प्रक्रिया से ही हमारी ज्ञान साधना को, हमारे साहित्य को विस्तारित किया। परवर्ती काल में जब आदमी लिखने लगा तो पहले लोगों ने क्या लिखा, तो पुरखों ने उन्हें जो बताया वो पहले उन्होंने उतार दिया, यानी पहले मन की बात नहीं लिखी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि हम पहले संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करते थे, फिर हमने मराठी में अपना लेखन लिखा, फिर हिंदी में हमने अपनी कथाएं लिखी। तो ये तो हर भाषा के साथ दोस्त होता है। तो अंतःसाक्ष के आधार पर ऐसे साधन समय समय पर विकसित होते रहे। तो हमारा भक्ति काल का जो इतिहास है वो किस आधार पर लिखा गया है, तो संतों ने जो आंखन देखी बातें लिखी, अपनी आंखों से देखा और लिख लिया। मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गयो हाथ, कबीर ने लिखा है कि मैंने मसी कागज हाथ नहीं लिया, मैंने जो आंखों से देखा वो मैंने बताया, परवर्ती काल में लोगों ने उसे उतार दिया। तो ये वाचिक परंपरा बाद में लिखित में आ गई। तो लिखित प्रक्रिया में या लिखित परंपरा में एक मराठी शब्द है, देखो, श्रवणीय बातें हमने पहले लिखी। मराठी में तो ऐसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों का नाम ही क्या है, आईक्यू ग्रंथ। आईक्यू ग्रंथ माने ऐसे ग्रंथों में बातें क्या होती है, तो पुरखों से हमने जो सुना, भले वह आख्यायिका हो, किंवदंतियां हो, किसी मंदिर के बनाने की कथा हो, किसी राक्षस के वध की कथा हो, किसी राजा के चरित्र की बात हो, किसी संतन के चरित्र की बात हो, हमने पुरखों से सुनी। और परवर्ती काल में जब लोगों के हाथ में लेखनी आ गई, उन्होंने सुनी सुनाई बातें लिखी। तो श्रवण प्रक्रिया से लेखन प्रारंभ हो गया। तो ऐसी श्रवणीय बातें प्रारंभिक काल में जिन लोगों ने लिखी वह अंतःसाक्ष में आता है। फिर समय समय पर कवियों ने जो लिखा, आपको मालूम है कि पुराने कवि जब लिखते थे तो उस रचना में अपना नाम डाल देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखने की परंपरा नहीं थी, वह मौखिक रूप से बताते थे कि यह फलाना फलाना काव्य फलाने फलाने। कबीर कहे, कबीर कहे माने ये पद कबीर का है। तुका मणि, इसका मतलब ये अभंग तुकाराम ने लिखा, ऐसा उसका बोध होता था। तो पहले लोग अपना नाम इसलिए डालते थे क्योंकि उनके पास लेखन की तादाद ताकत नहीं थी, परवर्ती शिष्यों ने इसको उतारने का काम किया। तो ऐसे जो अंतसाक्ष साधन होते हैं इससे दोस्तों इतिहास बनता है। और दूसरे साधन जिसको हम दोयम साधन, सेकेंडरी एविडेंसेस कहा करते हैं, एक होता है कि ट्रू एविडेंस, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अंतसाक्ष फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, चक्षुर्वय सत्यम, कि इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अंतसाक्ष की जो घटनाएं होती है, अंतसाक्ष का जो साहित्य होता है, उसे न इतिहासकार चुनौती दे सकते हैं क्योंकि अपने आप में वो प्रमाणी होता है। तो प्रामाणिक स्रोत होते हमारे इतिहास लेखन के। और दूसरे होते हैं दोयम, या जैसे अदालत में होता है ना कि परिस्थितिजन्य निर्णय, कि कोई हत्यारा होता है उसका ठीक चश्मदीद गवाह में नहीं मिलता है, तो न्यायाधीश किसके आधार पर निर्णय करता है कि हत्या के समय वो मौजूद था, हत्या के पहले उन्होंने प्रयास किया था। परिस्थितिजन्य गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जैसे निर्णय करता है, वैसे इतिहासकार भी दोस्तों परिस्थितिजन्य आधार पर इतिहास की रचना करता है। साहित्य का इतिहास इन दोहरे साधनों से विकसित होता है। तो समय समय पर हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनका आधार लिया जाता है। उस समय के ऐतिहासिक साधन होते हैं, जैसे शिलालेख है, ऐतिहासिक कागजात है, उनका आधार लिया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जनश्रुतियां होती है, आख्यायिका होती है, किंवदंतियां होती है, मौखिक कथाएं होती है, उनका भी आधार लिया जाता है। तो अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य, प्राथमिक और द्वयम, दोनों साधनों को लेकर हम लेखन स्रोतों को जुटाते हैं और इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी, मेरे प्यारे छात्रों, हमने समय समय पर ऐसे अनेकानेक साधन जुटाए और उन साधनों को जुटाकर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य का इतिहास है ना मेरे प्यारे छात्रों, समय समय पर अनेक लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, पर आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जैसे कि मैंने इसके पहली व्याख्यान की अपनी धारावाहिक परिसीमा में एक बार बताया था कि हमारे देश में ब्रिटिश आए, इसको भले हम एक राजनीतिक तौर पर गुलामी के आधार पर उसको निषेध की श्रेणी में रखते हैं, ये जरूर है और उसमें गलत तो बिल्कुल कोई बात है नहीं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारी भाषा और साहित्य इतिहास का संबंध है, हमें सदा सदा के लिए ब्रिटिशों का और हमारे सारे आक्रांताओं का ऋणी रहना चाहिए। हमारे देश में आप जानते हैं कि कितने तरह के लोग आए, हूण आए, कुषाण आए, नाग आए, मुगल आए, तुर्क आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, ये सारे लोग आते समय तरह तरह की बातें लेकर आए। कुछ लोगों ने नए खान पान की चीजें लाई, कुछ लोगों ने पोशाक लाए, कुछ लोगों ने परंपराएं लाई, कुछ लोगों ने इतिहास लाया, कुछ लोगों ने भाषाएं लाई, कुछ लोगों ने साहित्य ग्रंथ लाए। ये खाली हाथ नहीं आते थे, अपने साथ तरह तरह की अपनी परंपराओं को लेकर आते थे। ब्रिटिशों ने अपने साथ क्या लाया, ऐसा यदि आप मुझे पूछेंगे तो अंग्रेजी भाषा में लेखन साहित्य और इतिहास की एक लंबी परंपरा है। एक तो बात है कि जब ब्रिटिश हमारे पास आए थे तो हमारे पास शिक्षा दीक्षा की परंपरा नहीं थी। वह शिक्षा दीक्षा की परंपरा न होने के कारण मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश अपने साथ एक लीगेसी लेकर आए, एक परंपरा लेकर आए। वो क्या परंपरा थी, तो वहां अनुसंधान की बहुत बड़ी परंपरा थी। अनुसंधान की परंपरा मतलब कि ब्रिटिश संस्कृति में बातों को बुनियादी तौर पर समझ लेने, सोचने समझने की एक बहुत बड़ी परंपरा है। ब्रिटिश आए, वो परंपरा लेकर आए। यहां आकर लोग कहते हैं कि वो दो उद्देश्यों से आए, एक व्यापार के लिए आए, धर्म प्रसार के लिए आए, साम्राज्य विस्तार के लिए आए। ये सही है, गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह करते करते उन्होंने दो चार अच्छी बातें हमारे देश में की हैं। उसमें साहित्य और इतिहास के संदर्भ में बहुत बड़ी बातें ब्रिटिशों ने की या आक्रांताओं ने की, जो भी आक्रमक हमारे देश में आए उन्होंने की। वो क्या किया उन्होंने, और विशेषकर यूरोप से जो आक्रांता हैं, डच, फ्रेंच, अंग्रेज, पुर्तगाली, इन चार प्रकार के आक्रांताओं ने हमारे इतिहास, साहित्य, भाषा पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। क्या मेहरबानी की, तो इन्होंने हमारे सारे बोलियों को शब्दबद्ध किया, इन्होंने हमारे बोली को लिखित भाषा बनाया। इन्होंने हमारे पहले कोश बनाए। इन्होंने हमारा पहला इतिहास भी इन विदेशी विद्वानों ने लिखा है, जहां तक हिंदी साहित्य के इतिहास का सवाल है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य का विधिवत इतिहास एक फ्रेंच विद्वान ने लिखा। उसका नाम था गार्सा द तासी। उसने 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी के इतिहास के दो खंड लिखे। उस खंड का नाम है, उस इतिहास का नाम है, वह फ्रेंच नाम है, इस्त्वार द ला लिटरात्यूर एंदुई एंदुस्तानी। मैं दोबारा इसको दोहराता हूं, इस्त्वार द ला लिटरात्यूर एंदुई एंदुस्तानी। ये एंदुई माने हिंदुई, एंदुस्तानी माने हिंदुस्तानी, लिटरात्यूर माने लिटरेचर, इस्त्वार हिस्ट्री का वह फ्रेंच नाम है। हिस्ट्री किसकी? हिस्ट्री साहित्य की। इतिहास किसका? साहित्य का इतिहास। और किस भाषा का? एंदुई हिंदुस्तानी। मैं दो बातों को यहां आपके सामने मेरे प्यारे छात्रों आरंभ में ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान जो हमारी हिंदी है, उस हिंदी के विकास में दो हमारे राजकीय धाराओं का प्रभाव रहा है। एक है हमारी देशी धारा, यानी हमारे देश में समय समय पर हर्षवर्धन से लेकर आज तक देशी राजाओं ने राज्य किया। किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित की, किन्हीं राजाओं ने अपने छोटे मोटे संस्थानों में राज्य किया। तो हमारे जो देशी राजा थे, इन्होंने भी साहित्य संस्कृति की परंपरा को विकसित किया है। जहां तक हिंदी भाषा का सवाल है, हिंदी भाषा विकसित हो गई एक हमारी देशी भाषिक परंपराओं से, माने आर्य भाषाओं से और द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से हिंदी विकसित हो गई। दूसरा, हिंदी में जो परिवर्तन आया, वो विशेषकर जो मुस्लिम शासक आए, तुर्क आए, अरब आए, ये जो सारे तुगलक मुगल वगैरह ये आए, इन लोगों ने अपने दरबार की भाषा अपनी बनाई। भारत में तुर्की भाषा चलती थी, अफगान भाषा चलती थी, अरबी भाषा चलती थी। एक तरह से वह समय धर्मों का था। इसके आधार पर मैं बताऊंगा कि एक देशी परंपरा थी, वह हिंदू धर्म को लेकर चलती थी। विदेशी परंपरा, विदेशी आक्रांताओं ने भाषा पर जो प्रभाव डाला, भारतीय भाषाओं पर, अंग्रेजी का प्रभाव आधुनिक काल में आता है, लेकिन प्राचीन हमारी भाषाओं में जो प्रभाव आता है दोस्तों, वो मुगलों का बहुत बड़ा, इस्लामी शासकों का, जिसको हम स्थूल रूप से यवन कहा करते हैं, यवनों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर हो गया। उनकी जो अफगानी, तुर्की, अरबी, ये सारी भाषाएं थी ना, कि जिसकी एक लिपि थी पर्शियन लिपि, पर्शियन लिपि में उर्दू लिपि जिसको कहा करते, उर्दू भाषा हमारी, आज जिसको हम उर्दू कहा करते ना, ये उर्दू भाषा और कुछ नहीं है, ये उर्दू भाषा हिंदी भाषा का एक ऑफशूट है। ये दो भाषाएं आज भले स्वतंत्र रूप से विकसित है, लेकिन मैं इतिहास के आधार पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी से उर्दू का विकास हो गया है। हमारी ये गलत फहमी है कि उर्दू से हिंदी विकसित हो गई। नहीं दोस्तों, पहले हिंदी थी और बाद में उर्दू का विकास हो गया, और वह भी कब? जब यवन हमारे यहां आए, हमारी भाषा के साथ उस भाषा का संकर हो गया, तब जाकर ये भाषाएं विकसित हो गई। तो ये एंदुई माने हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी माने उर्दू। ये किस भाषा का इतिहास है? ब्रिटिश लोग बड़े चालाक राज्यकर्ता थे मेरे प्यारे छात्रों, उनकी राजनीति और व्यापार करने की एक मशहूर नीति है, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और राज्य करो। उन्होंने सब जगह हमें विभाजित किया, धर्म क्षेत्र में विभाजित किया, हिंदू मुसलमान में, भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने हमें विभाजित किया, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी माने उर्दू प्रचुर भाषा, पर्शियन लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, और हिंदी माने देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा। तो उन्होंने लिपियां अलग कर दी, भाषाएं अलग कर दी और हमारे देश को विभाजित किया। तो देश विभाजन की यह परंपरा हमारे इतिहास में भी प्रतिबिंबित होती दिखाई देती है दोस्तों। तो हमारा जो आरंभिक इतिहास है विदेशी लोगों का लिखा, वह पहले फ्रेंच में लिखा गया, फिर देशी परंपरा में भी एक ऐसे ग्रंथ हमें मिलते हैं कि जिसको हम विधिवत इतिहास लेखन की परंपरा में भले उनको हम नहीं रख सकते, लेकिन जहां तक गारसाद तासी ने जो विधिवत इतिहास लिखा उसके प्रमाण ग्रंथ क्या थे, उसके प्रमाण ग्रंथ हमारे अंत साक्ष्य थे। 84 वैष्णवन की यात्रा, उस समय वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म के 84 संतों के चरित्रों का एक ग्रंथ है, वह हमारे इतिहास का अंत साक्ष्य साधन है। दूसरा है भक्तमाल नाम का ग्रंथ, वह हमारा अंत साक्ष्य साधन है। तीसरा है कवि माला की, जिसमें कवियों की रचनाएं भी हैं और उनका संक्षिप्त चरित्र भी आता है। तो इन सारे ग्रंथों के आधार पर फ्रेंच इतिहासकार ने हमारा हिंदी का पहला इतिहास लिखा, पहला भाग वह 1839 में प्रकाशित हो गया 19वीं शताब्दी में, और दूसरा हिस्सा हमारे आजादी के पूर्व एक शतक माने 1847 में दूसरा हिस्सा तासी ने लिखा। इस ग्रंथ को आधार मानकर, एक प्रामाणिक ग्रंथ था तासी का, उसको आधार बनाकर परवर्ती काल में शिवसिंह सरोज नाम का एक ग्रंथ 1883 में लिखा गया शिवसिंह सेंगर ने। फिर ये जैसे गौरसद तासी ये फ्रेंच इतिहासकार था, वैसे एक अंग्रेजी इतिहासकार ने भी भारतीय सारी भाषाओं का, एक नहीं, माने तासी ने बस हिंदी और हिंदुस्तानी का इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों हमारी उस समय की माने लगभग 19वीं शताब्दी में जितनी सारी भाषाएं थी, प्रमाण भाषाएं भारत की, उन सारी भाषाओं का एक व्यक्ति ने इतिहास लिखने का काम किया, और वह महान ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की जो प्राथमिक भाषा है, प्रातिनिधिक भाषा है, उन सारी भाषाओं का इतिहास लिखने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। मैंने आरंभ में कहा कि इन लोगों का हमें ऋणी इसलिए रहना चाहिए कि इन्होंने प्राथमिक बातें ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर बाद में हम विस्तार कर सके। फिर इतिहास लेखन की एक देशी परंपरा भी विकसित होती, आपको दिखाई देते है कि जैसे मिश्र बंधुओं ने, यानी दो भाइयों ने मिलकर मिश्र बिंदु विनोद नाम का एक चार खंडों का इतिहास लिखा, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, फिर हिंदी के एक महापंडित समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। द्विवेदी साहब का ये जो ग्रंथ है ये इतिहास की दृष्टि से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, मैं तो ये मानता हूं कि जिसको हम खोलकर लिखने की बात होती है, विचारात्मक आलोचनात्मक इतिहास की रचना करने की एक नई पद्धति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लाई वह है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। फिर डॉ धीरेन्द्र वर्मा जी ने 1958 में हिंदी साहित्य नाम से 3 खंड प्रकाशित किए। फिर रामकुमार वर्मा ने ऐसा ही प्रयास किया। लेकिन हिंदी साहित्य का समग्र और विस्तृत इतिहास लिखने का काम काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने किया। उन्होंने 16 खंडों में एक एक खंड 1000-1500 पृष्ठों का आता है। मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा बृहत इतिहास मैं तो ऐसा मानता हूं, जहां तक भारतीय भाषाओं का मुझे ज्ञान है, कि इतना विस्तृत किसी भाषा का इतिहास अंग्रेजी के बाद भारतीय संदर्भ में यदि किसी भाषा का है तो मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा और साहित्य का जितना विस्तृत इतिहास लिखा गया है वह विश्व में अपनी मिसाल कायम करने वाली बात है। तो ये मैंने बिल्कुल संक्षेप में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हो गई उसको लेकर एक भूमिका आपके सामने रखने की बात की। जब इतिहास आता है तो इतिहास कभी काल से परे नहीं लिखा जाता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के जो 4 हिस्से मैंने बताए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसको यदि काल खंडों में बांटना है तो लगभग 1000 वर्ष का हमारा जो काल आता है हिंदी साहित्य का, उसको हम ऐसा देखेंगे कि जो अभी के मैंने ऐतिहासिक ग्रंथ आपको बताए, ये ऐतिहासिक ग्रंथ समय समय पर अपने अपनी परंपरा से लिखे गए हैं। हमारे यहां अंग्रेजी लेखन की परंपरा है और संस्कृत लेखन की परंपरा है। वैसे कालगणना भी दोस्तों 2 तरह की है। एक विक्रमी संवत है जिसे हम देशी कालगणना कहा करेंगे, दूसरा ईसवी सन है वह अंतर्राष्ट्रीय कालगणना है। वर्तमान काल में दुनिया भर में ईसवी सन को लेकर इतिहास लिखने की परंपरा है, परंतु हिंदी साहित्य का इतिहास जिन देशी इतिहासकारों ने लिखा उनके सामने संस्कृत से उद्भूत इतिहास लेखन की परंपरा थी और उनके सामने कालगणना भी हमारी भारतवर्ष की अपनी थी। उस समय भारतवर्ष में विक्रमी संवत चलता था। वह विक्रमी संवत और कुछ न होकर इन दोनों कालखंडों में एक 57 वर्ष का अंतर आता है। इतिहास ग्रंथों में आप देखा करेंगे कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 ग्रंथ है हिंदी में, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है, वह संवत परंपरा में लिखा गया है। दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आप देखा करेंगे तो वह ईसवी सन की परंपरा में लिखा गया है। तो आपके मन में यह भ्रम पैदा होगा कि यह संवत क्या है और ईसवी सन क्या है। तो मैं संक्षेप में आपको समझाना चाहूंगा कि ईसवी सन जो है ना वो कैसे आता है। तो संवत से 57 वर्ष घटा दो तो ईसवी सन आता है, ईसवी सन में 57 वर्ष मिला दो तो संवत आता है। तो दोनों कालखंडों में आपको दिखाई देगा कि 57 वर्ष का अंतर आता है। विक्रमी संवत पहले शुरू हो गया, ईसवी सन बाद में। इसे क्रम को आप मन में रखेंगे तो आपके मन में वर्षों की कालगणना है वह शायद हट जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर ऐतिहासिक ग्रंथ संवत परंपरा के हैं। तो उस आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जब हम चर्चा करते हैं तो आदिकाल एक ऐसे वर्ष 2 वर्षों का वह कालखंड नहीं है, वह करीबन 200 वर्षों का कालखंड आता है आदिकाल। संवत 1050 से 1375 तक का जो कालखंड है, या स्थूल रूप से ईस्वी सन 1000 से 1200 तक का जो कालखंड आता है, उसको हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा करते हैं। रीति काल है वह संवत 1375 से 1700 तक, माने स्थूल रूप से ईस्वी सन में देखा जाए तो 1200 से लेकर 1500 तक का कालखंड आता है। फिर तीसरा कालखंड है रीति काल, वह रीति काल है संवत 1700 से 1900 तक, माने ईस्वी सन 1500 से लेकर 1857 तक। और आधुनिक काल ध्यान में रखना आसान है कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को शुरू हो गया, तब से हिंदी साहित्य की आधुनिक परंपरा आती है। तो यह जो काल विभाजन है हजार वर्षों का, इस हजार वर्षों के कालखंड के इतिहास में से सिर्फ ही दो ही कालखंडों को हम इस साहित्य वर्ग प्रश्न पत्र में देखने वाले हैं। वह एक आदिकाल और दूसरा है भक्तिकाल, यानी मतलब 1000 से लेकर 1500 तक के 500 वर्षों के इतिहास में जो चार विभिन्न प्रकार की काव्यधाराएं विकसित हो गई, उनका अध्ययन हम यहां करने वाले हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है कि जिसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, जिस एमए पाठ्यक्रम को लेकर आप जिस भाषा की सूक्ष्मता से गहराई में जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे, वो हिंदी भाषा कैसे विकसित हो गई, उसको भी मैं संक्षेप में इसलिए समझाना चाहूंगा कि भाषा विकास की परंपरा आप नहीं जानेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये शब्द कैसे आ गए वगैरह। आज की तारीख में हमारी जो हिंदी है दोस्तों, उस हिंदी में आपको तरह तरह के शब्द मिलेंगे, अनेक भाषाओं के शब्द मिलेंगे। उसमें संस्कृत के शब्द है, प्राकृत के है, अर्धमागधी के है, पाली के है, अपभ्रंश भाषा के है, प्राकृत के है, शौरसेनी के है, पैशाची के है, मैथिली के है, सब तरह के अवहट्ट वगैरह बहुत सारी भाषाओं के समय समय पर शब्द आकर हमारी वर्तमान हिंदी बनी है। तो मैं स्थूल रूप से आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जितनी सारी भारतीय भाषा है, वे सारी भारतीय भाषाएं दो रूपों में बांटी गई, एक उत्तर भारत की भाषा है और दूसरी दक्षिण भारत की भाषा है। उत्तर भारत की भाषाओं को हम आर्य भाषाएं कहा करते क्योंकि आर्य वहां रहा करते थे। दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ी भाषा के क्योंकि द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में रहा करते थे। इसलिए हमारी भाषा भी उत्तरी और दक्षिणी है। जैसे हमारी मराठी भाषा है वह उत्तरी और दक्षिणी भारत की एक मध्य भाषा है कि उसमें दोनों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। प्राकृत से निर्मित जो वर्तमान भारतीय भाषा है उस परंपरा में हमारी मराठी आती है। उत्तरी भारतीय भाषाओं की परंपरा से हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली का विकास हो गया। दक्षिण परंपरा से कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु का विकास हो गया। लेकिन इन सबकी मूल भाषा पहले संस्कृत थी, जिसके दो रूप थे, एक को वैदिक रूप कहा करते और दूसरा लौकिक प्रवाह माना जाता है। लौकिक प्रवाह से प्राकृत बनी, प्राकृत से मराठी वगैरह भाषाएं विकसित हो गई। तो हमारी हिंदी जो भाषा है वह हिंदी भाषा प्राकृत अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। जिसे कवि की रचना को लेकर हम बात करने जा रहे हैं हमारी पहली इकाई में, जिस भाषा को लेकर, जिस एक रचना को लेकर हम आने वाले समय में विचार करने वाले हैं, वो पृथ्वीराज रासो नाम का जो काव्य ग्रंथ है, वो काव्य ग्रंथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद बरदाई नाम के कवि का ये जो ग्रंथ है, वह भाषा की दृष्टि से आप देखा करेंगे तो वह अपभ्रंश या प्राकृत परंपरा से विकसित है। दूसरा विद्यापति की पदावली आप देखा करेंगे तो संस्कृत अवहट मैथिली परंपरा से है। तो ये चार कृतियां असल में समय समय की चार भाषाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, लेखन शैलियों का प्रतिनिधित्व करती है, अपने समय के इतिहास को वह प्रतिबिंबित करती है। हमने मन में आया और चार रचनाएं चुनी ऐसा नहीं है, हम आपको इतिहास का एक प्रातिनिधिक चित्र आपके सामने रखना चाहते हैं, इसलिए हमने आपको ये सारी रचनाएं दी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान हिंदी है वह शौरसेनी परंपरा से आई, जैसे हमारी मराठी है वह अपभ्रंश की महाराष्ट्री परंपरा से आई। हिंदी की जो परंपरा है, हिंदी भाषा की, वह पहले कैसी भाषा थी हमारी, यानी जिसे आदिकाल को हम सोच रहे हैं, उस आदिकाल को यदि आपको विस्तार से समझना है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब तक आप हमारे हिंदी साहित्य निर्माण की परिस्थितियों को जान नहीं लेंगे, हिंदी भाषा के विकास की परंपरा को ठीक तरह से जान नहीं लेंगे, तब तक आपको आने वाले दिनों में जिन कृतियों का, जिन इकाइयों में हम कृतियों का अध्ययन करने जा रहे हैं, उन इकाइयों की रचनाओं का अध्ययन हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उस समय के इतिहास को भली भांति हम नहीं जान लेंगे। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इतिहास का एक समग्र आकलन मनुष्य को तब होता है कि जब तरह तरह से वह इतिहास को समझ लेने का प्रयास करता है। इतिहास को यदि समग्रता से समझना है दोस्तों तो आपको उस समय की राजनीतिक गतिविधियों को देखना होगा। जैसे हम देखा करते हैं कि समय समय पर राजाओं के घराने निर्माण हो गए, उन्होंने समय समय पर युद्ध किए, उनकी वंश परंपराएं चली, वो एक इतिहास जिसको हम राजनीतिक इतिहास कहा करते हैं। फिर साहित्यिक इतिहास होता है कि पहले किस कवि ने लिखा, उस समय भाषा कैसी थी, वो एक साहित्यिक इतिहास होता है। धर्म का भी एक इतिहास होता है कि धार्मिक परिस्थितियां बदलती है, राजकाज बदलता है तो धर्म की परिस्थितियां बदलती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा इतिहास के आकलन को लेकर कि कोई एक परिस्थिति, मेरे प्यारे छात्रों, स्वतंत्र रूप से कभी विकसित नहीं होती। मैं तो यह ऐसा मानता हूं कि किसी भी काल को आप उठाएंगे तो काल अपने समय की राजनीति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, अर्थ सबकी निचोड़ होती है, सबका प्रतिबिंब, सबका परिणाम हमारे साहित्य इतिहास पर, हमारे साहित्य कृतियों पर, ऐतिहासिक ग्रंथों पर पड़ता रहता है। और तभी तो हमारे साहित्य की जो एक व्याख्या की जाती है दोस्तों कि लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, इसका व्यत्यास भी है कि सोसाइटी इज अ मिरर ऑफ लिटरेचर। ऐसा नहीं होता कि साहित्य एक समय में अलग लिखा जाता है और समाज अलग होता है, ऐसा नहीं है। समाज जैसे होता है वैसे साहित्य होता है, साहित्य वैसे होता है जैसे समय होता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जहां तक हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का संबंध है, वह और कुछ न होकर वह अपने समय के साहित्य, भाषा, संस्कृति, रचना, इन सब की निचोड़ और एक सार्वत्रिक परिणाम का वह प्रकट रूप है। उस प्रकट रूप को हम विभिन्न परिस्थितियों के जरिए, प्रवृत्तियों के जरिए, कृतियों के जरिए भविष्य में देखने जा रहे हैं। तो इस मेरे पहले व्याख्यान में दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल संक्षेप में हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पृष्ठभूमि बताई। अब भविष्य में जाकर हम जिस पृथ्वीराज रासो रचना का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं, दूसरे व्याख्यान में मैं आपको पहले परिस्थिति और प्रवृत्तियों को समझाऊंगा और फिर अंतिम मेरे व्याख्यान में कवि चंद बरदाई और उसकी रचना हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।